हम सब ये आपसे कई दफ़ा हमने पूछा भी है और आप इस पर इज़हार ख्याल करते रहे हैं कि ये जो इद्दत है इसकी जो बुनियादी वजह है, जो रीज़न है इसको पीछे, इस हुक्म की जो इल्लत है वो तो असल में इस्तबराए रहम में ये वाज हो जाए कि ख़ातून के पेट में बच्चे का इम्कान नहीं है, ताकि कल कोई शुबा अंदेशा पैदा ना हो। सवाल ये पूछा गया है कि जो दीन और शरीयत के इस हुक्म का बुनियादी जो इल्लत मुतय्यन की गई है, इसके बारे में क्या ये नहीं कहा जा सकता कि इद्दत में सिर्फ ये इल्लत पेश नज़र नहीं है, बल्कि वो जो मुद्दत वहाँ गुजरेगी तलाक़ के बाद, उसमें शौहर के साथ कोई रफाक़त, मेल जोल और वो साथ रहने के नतीजे में शायद कोई दोबारा रिश्ता जुड़ने का इम्कान पैदा हो, तो ये कहना कि महज यही इल्लत है और वो इसमें शामिल नहीं है, तो ये हुक्म की मंशा के बरखिलाफ़ नहीं नज़र आता?
हाँ, मैंने तो जितना कुरान मजीद पर गौर किया है और दलाइल के साथ इसको बयान भी कर दिया है, कुरान से ऐसी बात नहीं मालूम होती। ये बिल्कुल वाज़ हो जाता है कि असल चीज़ यही है, असल चीज़ इद्दत में इस्तेबराए रहम है। बाकी ये है कि जिस वक्त अल्लाह ताला कोई हुक्म देते हैं तो उसके कुछ ज़िमनी फ़वाद भी होते हैं। यानी असल चीज़ क्या है, किस चीज़ को पेश नज़र रख कर ये बात कही गई है। चुनाचे उसमें देख लीजिए कि जिस वक्त वज़ अमल हो जाता है, 3 दिन के बाद हो जाए तो इद्दत ख़त्म हो जाती है। जब मियाँ बीवी के दरमियान मुलाकात नहीं हुई होती तो अल्लाह ताला कहते हैं कि कोई इद्दत ही नहीं है। जब इर्तियाब नहीं होता, यानी कोई शुबा नहीं है, इन इर्तबतुम के अल्फाज है ना सूरह तलाक़ में, तब भी कोई इद्दत नहीं होती। तो इसके साफ मानी ये हैं कि वो दूसरी चीज़ फ़ायदा है। यानी अल्लाह ने आपको एक हुक्म दिया, ये बिल्कुल ऐसे ही है, महज मिसाल दे के समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि नमाज हम इसलिए पढ़ते हैं कि हम अपने परवरदिगार से अपने ताल्लुक़ का इज़हार करें, उसकी याद ताज़ा करें, उससे अपने दिल को, अपने दिमाग को, अपने आज़ा को, अपने जवारे को उस तरह मुतल्लक करें कि उसकी अज़मत का इज़हार हो। और इसके लिए कुरान मजीद ने अकीम सलात ज़िक्री की तावीर इख्तियार की है। लेकिन इसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं, वो फ़ायद बाज़ अवक़ात अख़लाक़ी भी होते हैं। जैसे कुरान ने ख़ुद एक फ़ायदा बयान किया कि इन सलात तनहा अनिल फ़हशाए वल मुनकर। इसी तरह से हो सकता है कि कोई आदमी कुछ तिब्बी फ़वाद भी बयान कर दे, लेकिन वो मकसूद नहीं होते। वो तो असल चीज़ को जब आप करते हैं तो ज़िमनी तौर पर हासिल हो जाते हैं। तो जब एक औरत 3 माह की इद्दत गुजारेगी और कहा कि उसी घर में रहेगी, तो इसमें ये फ़ायदा है। और अगर आप गौर करके देखें, जो सूरह तलाक़ में वो जो फ़ायदा बयान किया है, वो फ़ायदा भी इस चीज़ का बयान किया है कि इसके दौरान में उन्हें घरों से ना निकालो, इकट्ठे रहोगे तो हो सकता है कि लाल्ला युहदस बाद ज़ाले का अमरा, अल्लाह ताला इसमें कोई और खैर या ख़ूबी की बात पैदा कर दे। तो ये फ़ायदा बयान किया है, इल्लत ये नहीं है, इल्लत वही है। और वो जगह जगह कुरान मजीद ने वाज़ कर दिया है। वरना आप ख़ुद बताइए कि अगर औलाद हो गई है मिसाल के तौर पर, तो इसके बाद तो लाजिम करना चाहिए था कि आप 3 महीने गुजारे ही जाए, क्योंकि बच्चा भी पैदा हो गया, बड़े इम्कानात हैं कि बच्चा ही दोनों के दरमियान मुआफ़क़त का बायस बन जाएगा। लेकिन उस पर भी अल्लाह ताला ने ये बात नहीं कही। और ये जो आम तौर पर इस्तदलाल किया जाता है कि 3 महीने ही फिर क्यों, तो ये इसलिए कि उसमें एहतियात का तकाजा है। यानी ये बात एक अय्याम आ जाने से भी वाज़ हो जाती है, लेकिन ऐसा होता है बाज़ औक़ात के उसमें शुबे का इम्कान रहता है, तो अल्लाह ताला ने उसको 3 महीने तक फैला दिया। मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, अपनी किताब में लिखा भी है कि बेवा की इद्दत 4 महीने 10 दिन इसलिए है कि कुछ पता नहीं होता आदमी कब दुनिया से रुखसत होगा, तो उसमें और ज़्यादा एहतियात का तकाजा है। आज के ज़माने में ज़ाहिर है कुछ दूसरे ज़राए ईजाद हो गए हैं जिनसे लोगों को मालूम हो जाता है, लेकिन इससे पहले तो लोगों के मालूम करने का एक ही तरीका था। इद्दत की असल इल्लत वही है, वो मौजूद है तो इद्दत होगी, वो मौजूद नहीं है तो इद्दत नहीं होगी। ताहम जब होगी तो उसके कुछ फ़ायदे भी होंगे, तो उन फ़ायदों को पेश नज़र रख कर अगर लोग ये तय कर लें कि नहीं ये गुजारेंगे तो बड़ी अच्छी बात है, इससे किसको इनकार है, लेकिन असल इल्लत ये नहीं है।